4 नवंबर दिन भर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फदर। बिहार में बीजेपी के एक नए विज्ञापन से बवाल मचा।
बीजेपी ने चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे इश्तिहार देना कायम रखा है, हमने इसका विरोध किया है।
योगी आदित्यनाथ की शाहरुख खान की हाफिज सईद से तुलना पर भी विवाद खड़ा हुआ। दुनिया जहान की में आज हमारी नजर होगी म्यांमार में होने वाले चुनाव और भारत म्यांमार संबंधों पर।
पड़ोसी के साथ अगर आप रिश्ते बनाना चाहते हैं तो फिर ये लग्जरी नहीं होती है हर बार कि भाई पड़ोसी की जो राजनीतिक प्रणाली है वो किस तरह की।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के गाय को लेकर एक नए विज्ञापन से बिहार का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बिहार के महागठबंधन के दलों और सीपीएम ने भी इसकी कड़ी निंदा की। चुनाव आयोग ने इसके मद्देनजर एक नया निर्देश जारी किया है जिसके तहत कल कोई भी पार्टी बिना अनुमति विज्ञापन जारी नहीं कर सकती। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में कल सीमांचल और मिथिलांचल इलाके के 9 जिलों में मतदान होना है। भारत ने कहा है कि वो जर्मन कार निर्माता कंपनी फोक्सवागन को नोटिस जारी करेगा क्योंकि उनकी कारों के कार्बन उत्सर्जन लेवल की जांच में भारी कमियां पाई गई हैं। भारतीय उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अंबुज शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 से 21 दिन का समय दिया जाएगा। अमरीका और दूसरे कई देशों में फोक्सवागन कारों के उत्सर्जन स्कैंडल की बात सामने आने के बाद भारत सरकार ने भी भारत में फोक्सवागन कारों की जाँच के आदेश दिए थे। मालदीव में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 30 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने एक सरकार विरोधी रैली से पहले यह कदम उठाया है। इस रैली का आयोजन देश के मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया था। पिछले कुछ हफ्तों से मालदीव अंदरूनी राजनीतिक संघर्षों में उलझा हुआ है। आपातकाल की घोषणा अटॉर्नी जनरल मोहम्मद अनिल ने की। राष्ट्रपति संविधान के कोड 253 के तहत आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं। आपातकाल आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और 30 दिन तक रहेगा। इस दौरान संविधान के निश्चित खंडों के तहत कुछ नियमों और प्रतिबंधों का पालन किया जाएगा। ये थे मोहम्मद अनिल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रोमानिया के प्रधानमंत्री विक्टर पोंटा ने अपने और अपनी सरकार के इस्तीफे की घोषणा की है। शुक्रवार को बुकारेस्ट में एक नाइट क्लब में लगी आग के मुद्दे पर लगभग 20,000 लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नाइट क्लब में आग इसलिए लगी क्योंकि सुरक्षा नियमों की उपेक्षा की गई। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक विमान हादसा हुआ है जिसमें कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। सूडान के रेडियो स्टेशन मिराया के मुताबिक ये एक मालवाहक विमान था जो पलोड राज्य की तरफ जा रहा था। हादसे में बचे लोगों की तलाश जारी है। सीरिया के सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने सरकार के अधिकार वाले अलेप्पो शहर को जाने वाले एकमात्र मार्ग पर फिर से कब्जा कर लिया है। पिछले महीने इस सड़क पर इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया था। सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि कल सुबह इस सड़क को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बिहार चुनाव के अंतिम और पांचवें चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 58 महिला प्रत्याशियों सहित 827 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें नीतीश मंत्रिमंडल के 6 मंत्री भी शामिल हैं। नीतीश सरकार के सबसे अधिक मंत्री इसी चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के एक नए विज्ञापन की वजह से बिहार की राजनीति गर्म रही। अंतिम चरण के मतदान के एक दिन पहले की चुनावी हलचलों पर पटना से मनीष शांडिल की रिपोर्ट।
कल शाम चुनाव प्रचार थम जाने के बाद आज सभी दलों के नेता और उम्मीदवारों ने घर घर जाकर अपने लिए समर्थन मांगा। कल 9 जिलों के 1.5 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा गाय पर जारी एक नए अखबारी विज्ञापन के कारण सियासी पारा चढ़ा रहा। इसमें राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित कुछ दूसरे नेताओं के बीफ खाने संबंधी हालिया बयानों के आधार पर भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। भाजपा का विज्ञापन पूछता है कि क्या नीतीश अपने साथियों के बयानों से सहमत हैं? आज पटना में महागठबंधन ने इस विज्ञापन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जदयू नेता और सांसद पवन वर्मा ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कहा,
बीजेपी ने चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ऐसे इश्तिहार देना कायम रखा है, हमने इसका विरोध किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर उनके निर्देशों का किसी भी तरह से अगर उसको फॉलो नहीं किया गया है तो वो एक्शन लेंगे।
कल सीमांचल और मिथिलांचल के जिन 9 जिलों में मतदान होना है उनमें से कई मुस्लिम बहुल जिले भी हैं। ऐसे में महागठबंधन ने इस विज्ञापन को दो कौमों के बीच हिंसा और नफरत फैलाने वाला करार दिया है, लेकिन इन आरोपों को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडे ने खारिज किया है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि पांचवें चरण में भी बिहार के मतदाता बदलाव के लिए वोट करेंगे।
अभी तक जिन 186 सीटों के चुनाव संपन्न हुए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुमत के आंकड़े 122 की संख्या से आगे निकल चुका है और कल जो पांचवें चरण का चुनाव होगा, यह पांचवें चरण के 57 सीटों का चुनाव भाजपा और एनडीए को 2/3 से 3/4 बहुमत की संख्या की ओर ले जाएगा।
पांचवें चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें मंत्री बिजेंद्र कुमार यादव और नरेंद्र नारायण यादव, राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, भाजपा नेता नीतीश मिश्रा और विनोद नारायण झा शामिल हैं। इसी चरण में पप्पू यादव और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि यह चुनाव बिहार के लिए नई सरकार चुनने के साथ साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का इकबाल भी तय करेगा। मनीष शांडिल, BBC पटना।
बिहार में मुसलमान वोटरों को लेकर दोनों प्रमुख गठबंधन बेफिक्र नजर आते हैं। महागठबंधन को लगता है कि मुसलमान वोट आराम से उनके खाते में आएंगे, तो बीजेपी के रुख से यही लगता है कि उनके मुस्लिम वोटों की चिंता ही नहीं। इन सब के बीच मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनकर कौन उभर रहा है? पटना से पंकज प्रियदर्शी की खास रिपोर्ट।
बिहार की राजनीति में जाति की चल रही बयार के बीच मुसलमान वोटों को लेकर दोनों प्रमुख गठबंधनों में कम ही चिंता देखी जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को पता है कि इस बार वे लोकसभा की तुलना में कम ही वोट पाएंगे, तो दूसरी ओर महागठबंधन पूरी तरह आश्वस्त है कि मुसलमान वोट कहीं और नहीं जाएगा। इसकी संभावना भी ज्यादा दिखती है, क्योंकि चुनाव प्रचार के क्रम में जिस तरह गोमांस, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठाया गया और पाकिस्तान में पटाखे फूटने जैसे बयान दिए गए, उससे यही लगता है कि बीजेपी को भी मुसलमान वोटों की चिंता नहीं। कहीं मुसलमान एक बार फिर इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक अरशद अजमल कहते हैं,
पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें यूज एंड थ्रो भी करती हैं, यानी कि इसी से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन ये सिंपल जुमला जो है इसके गहराई को नहीं बता सकता है।
लेकिन राजनीतिक पार्टियों की जुमलेबाजी के बीच कई जानकार ये भी मानते हैं कि अब पहले वाली स्थिति नहीं रही। इदारे शरिया के महासचिव हाजी सैयद मोहम्मद सनाउल्लाह कहते हैं,
कोई भी राजनेता यूज नहीं कर सकते हैं मुसलमानों को। मुसलमान वफादार होता है अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति श्रद्धा रखता है, अपने देश के लिए जान तक गंवाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो कभी भी किसी भी राजनेता के बहकाने में नहीं आता है।
लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण पर चल रही बयानबाजी के बीच मुसलमानों के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? जमाते इस्लामी के पटना शहर के अमीर और सलाहकार समिति शूरा के सदस्य रिजवान अहमद कहते हैं,
कोई हमको ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मुसलमानों के मसाइल को या मुसलमानों की जो इश्यूज़ हैं उसको किसी ने बहुत अच्छे से उठाए हों। हत्ता कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम लीडरान हैं, उन लोगों ने भी कुछ ऐसे मसाइल मुसलमानों के नहीं उठाए हैं।
लेकिन इस बार के चुनाव की खासियत ये भी है कि मुस्लिम वोटों के लिए कोई अपील नहीं जारी हुई है, किसी पार्टी ने भी अपील नहीं की। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते कि मुसलमान एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता है।
तो एक अजीब और गरीब ये बात पाई गई इस इलेक्शन में कि मुसलमान मेन स्ट्रीम में आके जनरल लोगों की तरफ वोट दिया, और ये सारे जो ये थे कि कोई अपील करेगा तो हम उसको देंगे, मैंने मास खुद मूव की, लीडर्स कोई का पता नहीं, कोई आप कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या कोई मुस्लिम पर्सनालिटी का आप इधर दो महीने के अंदर कोई बड़ी अपील ना, कि सेकुलर पार्टियों ने उनसे कभी अपील की गुजारिश की ना उन्होंने कभी अपील किया।
बिहार चुनाव के दौरान जिस तरह दादरी कांड की बातें हुई, बीफ पर बयानबाजी हुई और धर्म के आधार पर आरक्षण पर विवाद हुए, उसने मुसलमान युवकों को प्रभावित किया है।
बोल रहे थे कि अमित शाह ही बताएंगे कि पाकिस्तान में क्यों पटाखे फूटेंगे, वो तो खुद बोले तो उसका हाल तो वही जानते होंगे ना।
खाने पे रोक किसी पे नहीं लगाना चाहिए, जिसके धर्म में जो चीज़ है धर्म के साथ नहीं करना चाहिए। मान के चलिए कि मुस्लिम धर्म में जो चीज़ है उस पर बैन नहीं लगाना चाहिए।
देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि सब वोट के टाइम जो है अपना आते हैं, हाथ पर जोड़ करके अपना काम निकाल लें, उसके बाद अपने घर में जा करके बैठ जाते हैं। कौन जी रहा है कौन मर रहा है इससे उसको किसी को मतलब नहीं।
तो यहाँ की जनता को खुद खराब नहीं है, उनका डीएनए जो है उनका खुद का खराब है और वो अपने बात जो है इधर उछाल कर रहा है।
हाल ही में भाजपा में शामिल हुए साबिर अली मानते हैं कि बीजेपी को इन बयानबाजियों से नुकसान हुआ है।
नहीं, मैं आपसे कुछ बातों से सहमत इसलिए भी हूँ कि जिस तरह के दूसरे विपक्ष के लोग हैं और जिस तरह की बात करने लगते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे बयान आए होंगे जो मैं समझता हूँ कि उससे एक समाज आहत होता होगा, लेकिन जो दूसरे विपक्ष की पार्टियां हैं इस चीज़ को एक तूल दे देती हैं।
बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, वो है लालू यादव के मुकाबले मुसलमानों में नीतीश कुमार की बढ़ती पैठ। युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए लोग, सभी एक सुर से नीतीश पर भरोसा कर रहे हैं।
सब लोग आज हम लोग चैन से रात को जी रहे, घूम रहे हैं।
नहीं तो पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, नीतीश की सरकार में हम लोग इतना खुला फ्रीडम से जिंदगी जी है, नहीं तो हम लोग का। और दूसरी बात, एक और क्या चीज है कि जब भी आतंक और जितना भी चीज था नीतीश कुमार का ही रीजन में आता है।
बीजेपी जब तक थी नीतीश कुमार के साथ कनेक्ट, तो नीतीश कुमार अच्छे थे, और जब नीतीश कुमार अलग हो गए तो नीतीश कुमार खराब हो गए, उनका डीएनए ही खराब हो गया।
आज भी काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, अच्छा कर रहे हैं, आज भी अच्छा कर रहे हैं हम लोग।
क्या लालू प्रसाद से मुसलमानों का भरोसा कम हुआ है या भाजपा से अपनी राह अलग करके नीतीश बिहार में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनकर सामने आए हैं? अरशद अजमल,
आप जिस ऐतिहासिक क्षण में होते हैं उस ऐतिहासिक क्षण में आपको चुनना पड़ता है कि मोदी या नीतीश। इनके लालू या नीतीश जो है ऐतिहासिक क्षण का सवाल नहीं है, इनकी ये सवाल जो है एकेडमिक हो सकता है, सेफोलॉजी का हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक क्षण का सवाल तो बहुत सीधा सा है कि मोदी या नीतीश। ऑब्वियसली नीतीश एंड ऑब्वियसली नॉट मोदी।
बीच में बड़े जोर शोर से बिहार में अपने को लॉन्च करने आए असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के कुछ हिस्सों में स्थानीय नेताओं के प्रभाव को छोड़कर कम ही नजर आते हैं। क्या ओवैसी ने बिहार की राजनीति को गलत भांप लिया था? जमाते इस्लामी के रिजवान अहमद,
ओवैसी साहब की बात कहने की इसलिए नहीं है कि वो तो बिहार के लिए बिल्कुल ही अजनबी आदमी है, वो पहली दफ़ा आए हैं, हम लोग तो उनके काम से भी वाकिफ नहीं हैं, काम को भी नहीं जानते हैं, पहले तो उनको आना भी नहीं चाहिए था। इसलिए नहीं आना चाहिए था कि पॉलिटिकल सिर्फ जो है ये फ़ायदा उठाने के लिए या कह लीजिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए कोई आदमी आता है, तो ये बात किसी तरह से दुरुस्त नहीं होती।
इतना तो तय है कि बिहार चुनाव में मुसलमानों का रुझान महागठबंधन की ओर साफ दिखता है और नीतीश कुमार मुसलमानों के नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। पंकज प्रियदर्शी, BBC पटना।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। रोमानिया के प्रधानमंत्री विक्टर पोंटा ने शुक्रवार को एक नाइट क्लब में लगी आग के बाद हो रहे प्रदर्शनों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाइट क्लब में लगी इस आग से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में तकरीबन 30,000 से अधिक लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे थे। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
प्रदर्शनकारियों के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद रोमानिया के प्रधानमंत्री विक्टर पोंटा ने अपने और अपनी सरकार के इस्तीफे की घोषणा की है। पोंटा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके इस इस्तीफे से प्रदर्शन कर रहे लोगों को संतुष्टि मिलेगी। मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं जिसकी उम्मीद समाज का एक महत्वपूर्ण तबका कर रहा है, इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं और इसी के साथ समूची रोमानिया की सरकार भी इस्तीफा देती है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब से मैं राजनीति में हूँ मैंने हर किस्म की राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं और मैं इन्हें लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं जनता के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये फैसला एक बड़ी गलती हो सकती है और इसका जो भी नतीजा निकलेगा उसे हर किसी को भुगतना होगा। ये थे प्रधानमंत्री विक्टर पोंटा के शब्द। इससे पहले रोमानिया की सरकार के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने जुटे ये प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा। इन प्रदर्शनकारियों में से कईयों के पास रोमानिया के झंडे थे जिनमें छेद किए गए थे। ये 25 साल पहले घटित उस क्रांति का प्रतीक है जिसने रोमानिया के पूर्व राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट नेता निकोलाई चाउसेस्को का तख्ता पलट कर दिया था। मातेई नाम के इस प्रदर्शनकारी ने बताया, हमने महज एक कंसर्ट में जाने की कीमत पर अपने दोस्तों और भाइयों को खोया है। हम सभी को साथ आना होगा और उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं बाहर धकेलना होगा। आखिर ये तो हद हो गई है। ये थे एक प्रदर्शनकारी मातेई के शब्द। प्रदर्शनकारियों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था कि अधिकारियों ने इस आयोजन के लिए इस किस्म की सामुदायिक जगह को कैसे दे दिया जहां सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे। शुक्रवार की रात को ये आग उस समय लग गई थी जब एक म्यूजिक बैंड इस कलेक्टिव नाइट क्लब नाम के नाइट क्लब में अपना कार्यक्रम पेश कर रहा था। हादसे के वक्त इस इमारत में 400 से भी अधिक लोग मौजूद थे और बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। नाइट क्लब में हुए इस हादसे में घायल हुए 100 से अधिक लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं और इनमें से कई लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों को इस बात का अब भी डर है कि मरने वालों की संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री पोंटा पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मुकदमा चल रहा है। पोंटा रोमानिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पर अपने कार्यकाल के दौरान ही आधिकारिक तौर पर धोखाधड़ी, कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। हालांकि पोंटा अभियोजन पक्ष को गैर जिम्मेदार बताते हुए इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं।
रोमानिया के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ द्वारा असहिष्णुता के सवाल पर शाहरुख खान के बयान पर दी गई प्रतिक्रिया पर बहस छिड़ गई है। बुधवार को दिन भर इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन नेताओं के बयान से खुद को अलग कर लिया है और कहा है कि ये इनके निजी बयान हैं जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रवि।
भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बारे में किए गए ट्वीट ने खासा राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इतना कि आखिरकार उन्हें अपने ट्वीट वापस लेते हुए ये कहना पड़ा कि जो कुछ वो कहना चाह रहे थे उसे गलत संदर्भ में समझा गया है। मगर इसी बीच पार्टी के ही नेता और सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा बयान दे डाला जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया।
सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा।
योगी आदित्यनाथ को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब तरीके से पेश करने की एक साजिश चल रही है।
मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए।
कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि जो भारतवासी किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है उनसे भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा,
तमाम वो भारतवासी जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में ऐसा कहना, उनको अपमानित करना एक निंदनीय बात है। इस सरकार को प्रधानमंत्री स्वयं और उनके वो मंत्री, बीजेपी के नेता और संघ परिवार के आरएसएस के नेता, जिन्होंने अपमानजनक बातें कही हैं, उनको वापस लेकर भारत के नागरिकों से क्षमा याचना करनी चाहिए।
वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अलवी का कहना था कि देश में बढ़ रही असहनशीलता पर कई लोगों के बयान आए और सिर्फ शाहरुख खान पर इस तरह का इल्जाम लगाना निंदनीय है।
अकेले शाहरुख ने तो नहीं कहा है, इस देश के अंदर ये बात तो बहुत लोगों ने कही है कि इस देश के अंदर इनटॉलरेंस हो रहा है। क्या राष्ट्रपति भी पाकिस्तानी है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर भी पाकिस्तानी है? क्या वो तमाम साहित्यकार भी पाकिस्तानी है? कल हमने पूरा एक प्रोसेशन निकाला था, राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया था, क्या हम सब पाकिस्तानी हैं? सिर्फ शाहरुख, उस पे इस तरीके का इल्जाम लगाना निंदनीय है।
बहरहाल, जहां कैलाश विजयवर्गीय और योगी आदित्यनाथ के बयानों पर विवाद चल रहा है, वहीं पार्टी की एक और नेता साध्वी प्राची के ताजा बयान ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पशुपेश में डाल दिया है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
8 नवंबर को म्यांमार में आम चुनाव होने वाले हैं, जो बीते 25 साल में संभवतः पहला मौका है जहां बिना सैन्य हस्तक्षेप के विपक्ष की सही माने में भागीदारी हो रही है। दुनिया जहान में इस हफ्ते होने वाले म्यांमार के चुनाव के बारे में और जानकारी के साथ संदीप सोनी।
...1949 में आई फिल्म पतंगा के इस गीत में जिस रंगून का जिक्र है, वो कभी बर्मा की राजधानी थी। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती। बर्मा, जिसका नया नाम अब म्यांमार है, नेपिडो जिसकी नई राजधानी है। बुधं शरणं गच्छामि। लगभग 5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। और ये देश अक्सर 2 वजहों से अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुर्खियों में रहा है। पहला, रोहिंग्या मुसलमानों की दुर्दशा। और दूसरा, सैन्य शासन जिसके साथ जुड़ा है मानवाधिकारों का हनन और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूची का लंबा संघर्ष।
I think I became more political after I was put under house arrest than before, because once I was under house arrest I became totally a political animal.
आंग सान सूची को म्यांमार के सैन्य शासन ने 15 वर्ष तक घर में नजरबंद रखा। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सैन्य शासन के बावजूद 1990 के चुनाव में भारी जनमत हासिल किया, जिसे सैन्य शासन ने मानने से इनकार कर दिया। अगले ही वर्ष नजरबंदी के दौरान आंग सान सूची को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया, जिसे उनके पति और बेटों ने ग्रहण किया। म्यांमार में 2 दशकों के लंबे अंतराल के बाद 2010 में हुए आम चुनाव में सेना के दखल की वजह से विपक्ष की भूमिका ना के बराबर रही। लगभग 50 साल सैन्य शासन के बाद म्यांमार में 2011 में पहली बार असैन्य सरकार बनी, जिसका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है और देश में इसी हफ्ते आम चुनाव होने वाले हैं। मुख्य मुकाबला राष्ट्रपति थैन सैन की सत्तारूढ़ यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी और आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD के बीच है। जानकार इस चुनाव में आंग सान सूची की पार्टी NLD का पलड़ा भारी मान रहे हैं। थीन सेन और आंग सान सूची की पृष्ठभूमि और विचारधाराएं अलग अलग रही हैं। दोनों नेताओं की पार्टियां सोशल मीडिया और गीत संगीत के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। ...1890 के दशक में बर्मा ब्रिटिश भारत का एक तरह से हिस्सा था, जिसे ब्रितानी हुकूमत ने वर्ष 1937 में अलग करके अपनी एक अलग कॉलोनी के तौर पर विकसित किया। 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अस्तित्व में आया यह देश आज भी भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है और पूर्वी छोर पर भारत की सुरक्षा के हिसाब से काफी महत्व रखता है।
भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में दो जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की।
भारतीय सैन्य प्रवक्ता का यह बयान इस साल जून में तब आया था जब भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर उग्रवादियों को निशाना बनाया था। जाहिर है म्यांमार के चुनाव पर भारत की भी नजर होगी। भारत और म्यांमार के संबंध अब तक कैसे रहे और क्या भारत म्यांमार में सैन्य सत्ता का समर्थक रहा है? भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू।
एक जमाना था जब भारत प्रत्यक्ष रूप से चाहता था कि वहाँ पे लोकतंत्र बढ़ाया जाए, लेकिन फिर जो भी हालात थे म्यांमार के, जो वास्तविकताएं थी म्यांमार की सिचुएशन की, उसको मद्देनजर रखते भारत ने ये बेहतर सोचा कि बेहतर नीति वो होगी दोनों देशों के हितों के लिए अगर जो वास्तविकता है उसको पहचाना जाए और उसकी बुनियाद पे आगे बढ़े। पड़ोसी के साथ अगर आप रिश्ते बनाना चाहते हैं तो फिर ये लग्जरी नहीं होती है हर बार कि भाई पड़ोसी की जो राजनीतिक प्रणाली है वो किस तरह की। भारत जो भी वहां पर वास्तविक हुकूमत थी उसको भारत ने मान्यता दी कि म्यांमार की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का भी समर्थन हो, वो फोर्सेस पनपे। ऑंग सान सू ची से पुराने रिश्ते हैं।
साल 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ऑंग सान सू ची से मिलने रंगून पहुंचे थे। तीन साल पहले ओबामा के रंगून दौरे ने इस बात को एक बार फिर जाहिर किया कि म्यांमार में अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों की खासी दिलचस्पी है। क्या है इसकी वजह और वैश्विक परिदृश्य में म्यांमार के चुनाव का क्या महत्व है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर पुष्पेश पंत।
मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों में अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी दिलचस्पी और जिसकी दखलंदाजी का कोई फायदा नफा नुकसान बर्मा को या अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, और दूसरा देश चीन है। देखिए, अमेरिका की दिलचस्पी का एक खास मकसद तो ये है कि चीन की सरहद म्यांमार बर्मा से मिलती है, तो अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि बर्मा सिर्फ चीन के खाते में जाए। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, उनकी तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी और उनकी नीयत और नियत दोनों इरादा सब ये है कि डेमोक्रेसी का बिरवा हर जगह रोपा जाए। तो यदि डेमोक्रेसी की सुगबुगाहट बर्मा में हो रही है तो अमरीकी इससे नाखुश नहीं होंगे। और जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके हित कहीं ना कहीं अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमरीका के पूंजीवाद से जुड़ते हैं। चीन की दिलचस्पी की वजह क्या हो सकती है? तो अगर आप देखें तो तेल पाइपलाइन है जो अब वहाँ बर्मा में बिछाई जा रही है, तो वो चीन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह की है। और बर्मा में जनतंत्र की सुगबुगाहट के साथ ये ऐलान भी किया जा रहा है कि हम उस तरह का आर्थिक विकास करेंगे जिस तरह का मॉडल लगभग चीन के स्पेशल इकोनॉमिक जोन का है। तो चीन को कोई इसमें नाराजी या इतराज़ नहीं होगा यदि बर्मा में वो मॉडल आए, वन स्टेट टू सिस्टम्स, कि हांगकॉन्ग ग्वांगडाओ वाला प्रदेश अलग है और मगर डेमोक्रेसी सीमित है, वहीं तक सीमित है, और जब तक वो हद से बाहर नहीं गुजरती तब तक चीन को कोई इतराज नहीं।
8 नवंबर को होने वाले चुनावों में आंग सान सू ची की एनएलडी पार्टी को भले ही जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन क्या देश की सेना इस चुनाव के नतीजे का सम्मान करेगी?
The army cannot avoid this, but they've got weapons, so we can't completely trust them.
सेना चुनाव के नतीजे को मानने से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन उनके पास हथियार हैं, इसलिए हम उन पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर सकते।
क्या आंग सान सू ची म्यांमार की राष्ट्रपति बन पाएंगी?
हाँ, हमें इसकी उम्मीद है।
चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। जगह जगह चुनावी रैलियां हो रही हैं। आंग सान सू ची की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय लोग इस चुनाव को देश में बदलाव का ऐतिहासिक अवसर बता रहे हैं। इस हिसाब से 8 नवंबर का चुनाव म्यांमार के इतिहास में एक नई तारीख बनकर दर्ज हो सकता है। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। बिहार में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के गाय को लेकर एक नए विज्ञापन से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मालदीव में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने 30 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की अजीत सारथी ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।